right, here we go with Talk Before Wicket. और मेरे साथ इस वक्त उमर मौजूद हैं पाकिस्तान से. उमर, क्या हाल है आपका?
मैं ठीक ठाक. जलाल, आप सुनाए, क्या हाल चाल है आपके?
बस यार, अल्लाह का शुक्र चल रहा है. सुनाओ, सुने पाकिस्तान के काफी हालात इस टाइम के ऊपर जरा कंट्रोवर्शियल भी चल रहे हैं और खराब भी चल रहे हैं. बताओ क्या स्टोरी है
यार. कंट्रोवर्शियल भी चल रहे हैं, पॉलिटिकल अनरेस्ट भी बहुत है. और बल्कि मैं आज ये खबर देख रहा था यार, इकोनॉमिकली काफी हिट पड़ी है पाकिस्तान को. मतलब कि ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है मिफ्ता इस्माइल, उसने बोला है कि नेक्स्ट 12 मंथ्स में हमें $42 बिलियन चाहिए. तो ये एक ह्यूज अमाउंट है यार. ये बड़ा एक उस वजह से एक आजकल आज एक और रूमर था कि प्राइस जो है पेट्रोल की वो थोड़ी और उन्होंने बढ़ानी है. लेकिन शुक्र है
लोग, ये खाली अफवाह कह रहे हैं कि 270 तक चला जाएगा. बस क्या कह सकते हैं यार, दुआई कर
यार,
सकते हैं.
सही बात है यार. बाकी उसके अलावा आपको पता तो होगा कि लग्जरी आइटम्स तो फुल ऑन बैन हो गया पाकिस्तान में. मतलब अब हम लोग लोकल इंडस्ट्री को जो है प्रमोट करेंगे, तो ये अच्छी बात भी है एक लिहाज से.
अच्छी तो बात,
लेकिन साथ साथ, लेकिन साथ साथ एक अच्छी खबर भी है हमारे पास कि मुल्तान में हमारा एक मैच होने वाला है, वेस्ट इंडीज सीरीज स्टार्ट होने वाली है.
बिल्कुल,
तो काफी अरसे बाद एक अच्छी खबर आ रही है और खास तौर पे मुल्तान वालों के लिए, क्योंकि मुल्तान में काफी अरसे बाद कोई ODI सीरीज ऐसे होने वाली है कि तीनों मैचेस वहां पे होंगे.
बिल्कुल. सो बस यही है कि पहले मेरा ख्याल है रावलपिंडी में था और अब मुल्तान में चला गया है. और मैं देख रहा था कि मुल्तान का अभी मैंने कंप्यूटर पे भी निकाला है कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चल रहा है पूरी सीरीज का, तो बड़ा टफ हो जाएगा. तो उसी सीरीज के लिए ये, मतलब ये एपिसोड पे अभी हम बात करेंगे आगे. तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और जो मैच है, मैच का टाइम जो है वो 4 PM पे आई थिंक, राइट?
ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है. ये काफी हिट करेगा पाकिस्तान को भी और वेस्ट इंडीज को भी. लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह आपका जो लास्ट ईयर PSL अबू धाबी में हुआ था, वो भी समर का टाइम था, तो BBL भी जब हुआ है तो उस टाइम भी गर्मी काफी थी. और अभी जहाँ पे वेस्ट इंडीज खेल के आए नीदरलैंड में, तो वो भी काफी एक काफी गर्म जगह थी वहां पे. तो मेरे ख्याल में ये लोग कोप अप कर लेंगे दोनों टीम्स, और पाकिस्तानी तो कुछ ज्यादा कर लेंगे क्योंकि आज पे लोड शेडिंग भी है पाकिस्तान में. तो
नहीं, वो बात तो ठीक है, वो बात ठीक है. मैं इसका स्केड्यूल देख रहा था कि मैचेस के दरमियान सिर्फ एक दिन का गैप है. मतलब पहला मैच 8 जून को है, फिर 10 जून को है, और फिर 12 जून को है, और सारे मैच डे एंड नाइट है, मतलब 4 बजे. तो देखते हैं, शायद गर्मी का असर 4 बजे तक थोड़ा कम हो जाए, लेकिन क्या कह सकते हैं यार, 45 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज्यादा होता है.
बहुत ज्यादा होता है भाई. मैं तो अभी आपकी वीडियो में देख रहा हूँ ना, आपने जो अपर पहना हुआ हुड है, अपर इसको पहना देख के मुझे गर्मी लग रही है.
बस यार, यहाँ पे इस टाइम के ऊपर 14 डिग्री है टेम्परेचर ना वॉशिंगटन. अच्छा. में तो देखो. अच्छा. अभी अल्लाह करे पाकिस्तान में भी जरा थोड़ी गर्मी कम हो या एटलीस्ट लोड शेडिंग तो ठीक हो जाए.
मतलब ना ही समझे यार इस बड़ी बात पे.
नहीं नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा. अच्छा, ये बताएं कि मुल्तान में पिचेस का क्या कोई खबर शबर है आपके पास, कि क्या कोई हाई स्कोर यार
मुल्तान की जो पिचेस हैं उसमें आप कह सकते हैं कि एवरेज स्कोर जाएगा 250 तक.
अच्छा.
और अगर पास्ट, हाँ अगर हम पास्ट में देखें ना, तो जो जोन सी टीम सेकंड इनिंग पे बैटिंग कर रही है तो वो जीत रही है ज्यादा. मतलब यही मैं ब्लॉग्स वगैरह भी देख रहा था, तो उसमें भी यही कह रहे थे कि जोन सी टीम जीतेगी तो वो सेकंड बैट करेगी.
सेकंड बैट और ये पिच ड्यू शू का भी कोई चक्कर हो.
एग्जैक्टली, बिल्कुल. और सबसे मजे की बात इसमें ये है कि स्पिनर्स को बहुत फायदा होने वाला है इस पिच,
अगर ड्यू ना हुई तो.
अगर ड्यू ना हुई तो हाँ, ये बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल. और ये इसका मैं वो भी देख रहा था कि लास्ट के जो PSL मैचेस हुए थे ना, जो लास्ट आई थिंक 2020 और 2021 वाला सीजन था, मुल्तान में 3 मैचेस हुए थे PSL के भी, तो उसमें भी ज़रा हाई स्कोरिंग मैच ही थे. मतलब एक में 199 मुल्तान ने स्कोर किया था, एक में 186 स्कोर किया था, और एक थोड़ा लो स्कोरिंग मैच था 123 का. बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ओवरऑल हाई स्कोरिंग मैच होंगे. देखते हैं, लेकिन गर्मी से अगर प्लेयर्स कोप अप कर जाएं. बाकी आपने टीम शीम देखी है?
यार टीम देखी है थोड़ी बहुत, मुझे समझ आ रही है कि मोहम्मद वसीम ने क्या किया है,
अच्छा
लेकिन बड़ी
कंट्रोवर्शियल।
काफी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है यार। मतलब आपने भी देखी होगी, आपकी भी वही कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे माइंड में,
बिल्कुल, अभी
जो
हम
उनसे एक
व्यूअर्स को भी
आम
दिखाते हैं।
पाकिस्तानी के माइंड में आ रहा है। जी जी बिल्कुल
बिल्कुल, ये देखें, बताएं जरा क्या स्टोरी है
हाँ।
इसकी, कंट्रोवर्शियल क्या
अब
क्या 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 बातें कंट्रोवर्शियल हैं।
तो हम लोग सीक्वेंस से चलते हैं कि
बिल्कुल
टॉप पे हमारे बाबर आजम है, ये
हाँ
तो कैप्टन है, बनता
बिल्कुल
है, बिल्कुल बनता है, मेक सेंस भी कर रहा
बनता है,
है
ये एक ही बंदे का
एक
तो बनता है
बंदे का बनता है बिल्कुल,
शाहीन के
और
भी वैसे
साथ आप
बनता है।
शाहीन का भी बनता, शाहीन का बनता है, लेकिन वही
हाँ
बात है कि मतलब एक अभी PSL हुआ है, अभी देखते हैं आगे क्या क्या बनता है।
हाँ हाँ
तो उसके साथ साथ एक और इस पे स्क्वाड में आपको शादाब खान नजर आ रहा होगा, उसकी एंट्री हुई है,
बिल्कुल,
वो फिट
इंजर्ड
हो गया है।
इंजरी से वापस आया, वर्ल्ड कप बड़ा अच्छा गया था, मतलब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो
बिल्कुल
सेमीफाइनल में बहुत जबरदस्त बेचारे ने परफॉर्मेंस दी,
बहुत
लेकिन
जबरदस्त
मतलब अनफॉर्चुनेट रहा रिजल्ट, बट ओवरऑल तो मतलब फॉर्म में वापस भी आए वर्ल्ड कप में, फिर इंजर हो गए, लेकिन
बिल्कुल
देखते हैं अभी
लेकिन ये
होपफुली।
इस स्क्वाड के हिसाब से मेरे ख्याल में यही एक स्टेबल ऑलराउंडर है हमारे पास, क्योंकि बाकी
बिल्कुल,
अगर आप इफ्तिखार
नवाज
अहमद को
नवाज
देखते
भी
हैं।
स्टेबल होगा आई थिंक, नवाज को अगर अपॉर्चुनिटी मिले, वो भी इंजरी से वापस आ रहा है, नवाज भी एक अच्छी ऑलराउंड ऑप्शन है बैटिंग बॉलिंग में।
हाँ नवाज भी है बिल्कुल, मतलब देखें इस स्क्वाड में मोहम्मद नवाज है, शादाब है, और बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये कुछ प्लेयर्स हैं जो कि एक्सपीरियंस हैं। मतलब बाकी आप देखें काफी ज्यादा है, जैसे अब्दुल्ला शफीक है, ये यहाँ पे डेब्यू कर रहा है,
यार
तो
जो
इफ्तिखार
टॉप थ्री
अहमद
है ना, मेरा ख्याल है वो काफ़ी स्टेबल है, मतलब अगर आप देखो इमाम बहुत अरसे से खेल रहा है, फ़खर बहुत अरसे से खेल रहा है, और वो दोनों तो खैर उनकी वनडे में परफॉर्मेंस भी बहुत एक्सेप्शनल रही है, ख़ासतौर पे फ़खर तो
बिल्कुल
ODI टीम ऑफ द ईयर में भी था लास्ट ईयर, तो फ़खर इमाम और बाबर ये तो तीन तो हमारे ऊपर काफ़ी स्टेबल है ना। जो इसमें कंट्रोवर्शियल मैं आपसे पूछना चाह रहा था, वैसे तो अब्दुल्ला शफीक ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है टेस्ट मैच में, ठीक है T20s में जब वो न्यूजीलैंड में खेला तो इतनी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन ओवरऑल हमें पता है टेक्निकली बहुत अच्छा बैट्समैन है और फ्यूचर नज़र आ रहा है उसमें, यंग बैट्समैन है, लेकिन वाई नॉट शान मसूद, जिसने तीनों फॉर्मेट्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ठीक है उस पे आपने प्रेफरेंस दे दी अब्दुल्ला शफीक को, इवन दो आपके टॉप थ्री में आपको पता है जगह नहीं है, लेकिन क्या शान मसूद आपकी नज़र में ज़्यादा डिजर्विंग नहीं थे?
यार आपकी बात बिल्कुल सही है, शान मसूद बहुत फॉर्म में था, लेकिन मेरे ख्याल में ना इस टाइम मतलब उसकी जगह नहीं बन रही थी, क्योंकि वो आता है ओपनर, टॉप ऑर्डर
हाँ
बैट्समैन है,
बिल्कुल
तो टॉप ऑर्डर में इस टाइम अगर आपके पास फखर भी है, सही है, आपके पास क्या कहते हैं इमामुल हक है, और अब्दुल्ला शफीक को भी एक नए टैलेंट को चांस दे रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे अभी शान मसूद की जगह बनती है, क्योंकि वो मैंने मोहम्मद वसीम के भी देखे रिव्यूज, उसने बड़ा अच्छा एक किसी कोई था ब्लॉग वहां पे लिखा था कि
अच्छा
मोहम्मद वसीम से एक एंकर ने सवाल भी किया ना कि आप शान मसूद को क्यों नहीं चांस दे रहे हैं, तो उसने बोला कि शान मसूद को हम लोगों ने एक टेस्ट मैच पे उसको हमने एज अ रखा हुआ है, एज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन रखा हुआ है, वो टॉप थर्ड में, लेकिन अभी हम ODI में लाने के लिए ना उसकी हम डोमेस्टिक परफॉर्मेंस पहले देखेंगे और उसके बाद हम उसको देख लेंगे।
यार ये पॉइंट यही तो कंट्रोवर्शियल है कि उसकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल है ना, इवन ODIs की भी, और अब आप PSL में उसकी परफॉर्मेंस देखो तो बहुत
हाँ
ज़्यादा
PSL में
एक्सेप्शनल
तो
परफॉर्मेंस उसने दी
बहुत
है,
अच्छी,
इवन दो के शान मसूद के साथ टैग ये लगाया हुआ है कि ये लॉन्गर फॉर्मेट का प्लेयर है, ठीक है, लेकिन उसने शॉर्टर वर्जन में भी लास्ट 2 साल से वो परफॉर्मेंस दे रहा है। अभी आप
परफॉर्मेंस दे रहे हैं।
काउंटी में देखो, उसने बैक टू बैक डबल सेंचुरीज की और बहुत तेज खेला है, मतलब काउंटी में भी ही वॉज प्लेइंग विद आई थिंक अराउंड 60-70 के स्ट्राइक रेट से काउंटी में, ठीक है, मतलब टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ, तो मतलब मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि अब्दुल्ला शफीक की जगह मैं ज़्यादा प्रेफर करता शान मसूद को, बट एनीवेज आप कहते हैं अब्दुल्ला शफीक क्योंकि फ्यूचर है तो
यार
गुड ऑप्शन है,
हाँ
कोई इतनी ज़्यादा बैड बैड चॉइस नहीं है,
मतलब इसका
बट
भी स्ट्राइक रेट अच्छा है यार। दूसरा मैं इस स्क्वाड में एक और चीज देख रहा था कि इन लोगों ने ज्यादा T20 फॉर्मेट वाले प्लेयर्स रखे हैं, अगर आप देखें कि अब्दुल्ला शफीक हो गया, मोहम्मद वसीम, ये सब, ये खुशदिल शाह जो है, और
हाँ
ये
हाँ
सब वो प्लेयर्स हैं जो मतलब ना जिनका स्ट्राइक रेट काफी मतलब उस तरह कोई स्टेबल जैसा एक जमाना था हारिस वेद, मतलब आपके जो मिडिल ऑर्डर वाले बैट्समैन की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली 50 ओवर्स वाले, तो
बिल्कुल
उस तरह का मुझे कोई प्लेयर इसमें नजर नहीं आया। शायद हो सकता है इनके माइंड में ये हो कि आगे वर्ल्ड कप आने वाला है और अब
वर्ल्ड कप T20 का भी
एक
आने
टाइम
वाला है,
ट्रायल कर ले। हाँ वही ना,
एशिया कप
T20 की
भी
बात
आने
कर
वाला है,
सकते
तो काफी प्रेशर मैचेस हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि इसमें
हैं।
अप फॉर डिबेट था उसके साथ, वो अनलकी रहा है मेरा ख्याल है, सऊद शकील बहुत अनलकी रहा है कि वो लास्ट सीरीज
यार
में था।
हाँ बिल्कुल,
हाँ
आप वो साउथ शकील के बारे में जरा बताएं, वो
सऊद शकील,
काफी
वही
उसके
मैं
आजकल
कह रहा था कि वो काफी अनलकी रहा है कि उसको चांसेस कंसिस्टेंट नहीं मिल रहे, और हालांकि उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ये सऊद शकील और हारिस सुहेल जो हैं डोमेस्टिक में, सबको पता है कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और काफ़ी अरसे से दे रहे हैं। हारिस सुहेल का ये कह सकते हैं कि उनका फिटनेस के काफ़ी मसाइल रहते हैं और उनकी नी की भी प्रॉब्लम है, लेकिन जो
बिल्कुल।
है सऊद शकील मेरा ख्याल है एक एक स्टेडी बैट्समैन, जो आपके मिडिल प्योर मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है, जिसकी जगह आपने प्रेफरेंस दे दी है इफ्तखार को, जो डोमेस्टिक में उसकी T20 में तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, PSL अच्छा नहीं गया, लेकिन डोमेस्टिक जो पाकिस्तान कप वगैरह था उसमें खैबर पख्तूनख्वा की टीम को जिताया, कैप्टन भी थे। लेकिन आई आई थिंक कि अभी उनका जो वनडे का रिकॉर्ड है ना, वो उस पर क्वेश्चन मार्क हैं, उस पर
नहीं
हैं।
बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। मैं भी आपसे बात करना चाह रहा था कि खाली 124 रन्स
हाँ
और वो 10 मैचेस खेले आई थिंक इसमें
10 मैचेस आई थिंक कि बहुत,
बिल्कुल।
और
लेकिन
इनको,
इसमें
हाँ
एक
बोलो बोलो।
जी आप कंटिन्यू। अच्छा मैं कह रहा था कि इसको ऑस्ट्रेलिया वाले टूर में भी लेके गए थे और ये
हाँ
प्लेइंग 11 में था, तो
बिल्कुल
समझ नहीं आ रही है क्या वजह बन रही है इफ्तिखार अहमद को इतना प्रमोट किया जा रहा है। मतलब
मेरा ख्याल यही
मैं
है, जिस तरह
तो
आपने कहा ना कि T20 को मद्देनजर रख रहे हैं, तो शायद इफ्तिखार को थोड़ा और रन देना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट सीरीज में आसिफ अली भी थे वैसे, बाय द वे, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में वनडे मैचेस में,
बिल्कुल बिल्कुल
वो भी नहीं है, विच मतलब वनडे में मेरा तो ख्याल है ठीक ठीक डिसीजन है कि उनको शायद वो T20 में ही रखना चाहिए, बट इफ्तिखार का मेरे मेरी नज़र में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मे बी सऊद शकील, हारिस सुहेल इफ ही वॉज फिट वॉज अ बेटर ऑप्शन। मेरी कंटेंशन तो ये भी है कि अगर आपने ऑलराउंडर ही रखना था तो वाई नॉट इमाद वसीम इन प्लेस ऑफ इफ्तिखार अहमद। आपको कितनी मतलब बैटिंग डेप्थ चाहिए, और इफ्तिखार की कोई एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस तो वनडे में रही नहीं है, तो वाई नॉट एन इमाद वसीम।
यार यार वही बात है कि अगर मिडिल ऑर्डर की अगर हम बात करें, आप इसको कह रहे हैं कि इमाद वसीम को मिडिल ऑर्डर में मतलब खिलाया जाए, मतलब
यार इमाद को
जहां
थोड़ा
पे
नीचे भी अगर
फोर्थ
ले
फिफ्थ
आए,
पोजीशन।
हाँ मैं मेरा मेरी जो कंटेंशन है, अभी हम प्लेइंग 11 भी बनाएंगे, मेरी कंटेंशन या मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि आप रिजवान को 4 पे भेजो, और आप 5 पे भेजो नवाज को, ठीक है, या खुशदिल को, ठीक है, खुशदिल को भेज दो
ठीक
5 पे,
है
6 पे आप नवाज को भेज दो, तो अब देख लो 7 पे इमाद आ जाए या शदाब आ जाए, और 8 पे इमाद अगर आ रहा होगा तो बहुत बड़ी मतलब, आपको इससे क्या आपको और डेप्थ चाहिए, ठीक है, तो काफी ज्यादा मतलब बैटिंग डेप्थ तो बन जाती है।
हाँ सही कह रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर 8th में देखें ना, आपके जो सीक्वेंस होती है लाइनअप पे उसपे 4 बैट्समैन सही है और 4 आपके होने चाहिए बॉलर, प्योर बॉलर, अच्छे बॉलर्स होने चाहिए। दो
बिल्कुल
ऑलराउंडर आ गए और एक विकेट कीपर आ गया, ये एक स्टैंडर्ड मतलब मेरे ख्याल में ऐसा होना चाहिए, अच्छा स्टैंडर्ड है ये। तो
बिल्कुल सही कह रहे
अगर
हो।
हम 8th नंबर पे इमाद वसीम को लाएंगे तो वो कुछ मेक सेंस नहीं करी बात। अगर हमने इमाद वसीम को ऊपर लाना है तो फिर या कोई प्लेयर हम ऊपर से रिप्लेस करें जो आपने
ठीक
लाइनअप
है,
बताई है
नहीं आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी
ना।
ठीक है, इस पे डिस्कस करते हैं ना, जरा अभी प्लेइंग 11 बनाते हैं
और
पहले
दूसरा
आगे।
एक और बात, मैं यहाँ पे मुझे याद है आप बात कर रहे थे इमाद वसीम को क्यों निकाला, और इसमें हमारे जो फेवरेट जो हमारे सेलेक्ट मोहम्मद वसीम जो है उन्होंने बोला है वो फिट नहीं है। हालांकि उनकी
यार
मैं
अब वही वाली बात है
सोशल
कि
मीडिया देख
इन्होंने आपको वर्ल्ड कप से पहले भी इमाद को निकाला, और उस टाइम भी बोला था कि ये फिट नहीं है, और वर्ल्ड कप में इमाद की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, तो अभी भी इमाद फिट नहीं है, तो पता नहीं, मुझे थोड़ी सी इसमें लगता है कि शायद वो नवाज क्योंकि डाला है, और नवाज और इमाद थोड़े लाइक फॉर लाइक प्लेयर्स बन जाते हैं, तो उसने कहा कि यार नवाज is better than Imad, at least current scenario mein. Aur shayad special preference bhi thodi si wo Mohammad Wasim ki ho Nawaz ki taraf, to is wajah se mujhe lagta hai ki usne Nawaz ko over Imad rakha hai.
हाँ, क्योंकि मोहम्मद वसीम ने बोला है कि इमाद वसीम फिट नहीं है बिल्कुल भी. अच्छा, दूसरी इसमें ये भी ना कि देखिए हमारे पास टीम में भी ऑफ ब्रेक कितने स्क्वाड में
यार, मतलब राइट आर्म अगर आप ऑफ स्पिनर की बात कर रहे हो तो वो तो सिर्फ
नहीं, ओवरऑल मतलब राइट लेफ्ट दोनों को अगर हम करें ना,
देखिए यार इफ्तिखार पार्ट टाइम बॉलिंग करता है, ठीक है, और आपका मोहम्मद नवाज है और खुशदिल से इन्होंने PSL में कराई है, खुशदिल है तो और तो इतनी ऑप्शन नहीं है. लेग स्पिन की देखो शादाब है और आपका जाहिद है, लेकिन इसको एक बार गो थ्रू करते हैं कि हसन अली के बारे में क्या ख्याल है.
यार हसन अली ना याद,
अप एंड डाउन चल रहा है ना,
आप सेमीफाइनल याद करा देते हैं
आप. यार सेमीफाइनल तो
लेकिन इसमें हमें कुछ कहना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे कैप्टन साहब ने कहा है कि मतलब आप इस चीज को भूल जाए, इसकी वजह से नहीं हारे हम, उसकी वजह ये चीज नहीं बोल ली हमने. लेकिन
नहीं वो बात ठीक है उसकी भी, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अभी जैसा काउंटी में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी हसन अली ने, तो हसन अली मे बी फॉर टेस्ट मैच हसन अली इज अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि टेस्ट मैच में वो मार्शार वाला उस तरह डर नहीं होता. T20 और वनडे में थोड़ी सी मेरा मतलब रिजर्वेशन है, T20 में तो बहुत ज्यादा है, वनडे में चलो ठीक है, आई एम फाइन विद इट. और आगे अगर आप उसका देखो, इमाम तो सेट है, इफ्तिखार पे हमने बात कर ली है कि थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर. खुशदिल शाह के बारे में क्या ख्याल है आपका?
यार खुशदिल शाह वही बात है कि T20 प्लेयर लगता है मुझे, मतलब अभी तक उसका ODI में मेरा नहीं ख्याल कोई इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, 4 मैचेस खेले हैं खाली उसने.
हाँ मतलब उसको चांस भी नहीं मिला ना, तो मेरा ख्याल है कि जो उसकी PSL में परफॉर्मेंस थी उसको कंसीडर करें, उसने मैचेस फिनिश किए हैं, उसने छक्के मारे, चौके मारे, उसने विकेट लिए, तो आई थिंक फेयर इनफ चांस को देना चाहिए.
यार देखे ना आप, वो देखे ये बड़ा मसला है ना, हम मतलब T20 एक बहुत सेपरेट चीज है, 50 ओवर्स बहुत सेपरेट चीज है, तो अगर हम T20 की बेस में उस मतलब 50 ओवर्स में लाएंगे तो वो इतनी सही चीज नहीं है मेरे ख्याल में. जैसे आपने साउथ शकील की बात की, वो इस तरह के प्लेयर्स 50 फॉर्मेट के लिए वो प्रमोट करने के लिए
यार, लेकिन अब वनडे भी तो चेंज हो रही है ना, आपको तेज खेलने वाले प्लेयर्स भी चाहिए, तो साउथ शकील इज अ गुड बैट्समैन जो कि ऊपर मेरा ख्याल है तीसरे चौथे नंबर पे इज वेरी गुड, लेकिन अगर आप लोअर डाउन द ऑर्डर की बात करो, अगर खुशदिल ने छठे पे आना है तो, या अगर चौथे पे आना है और मैच को एंड में फिनिश करना है, तो मेरा ख्याल है उसके पास जो पावर हिटिंग एबिलिटीज है ना वो साउथ के पास नहीं है, तो अगर लोअर डाउन दी ऑर्डर के हिसाब से देखें तो मेरा ख्याल है बुरी ऑप्शन नहीं है. आपके पास और क्या ऑप्शन थी? आसिफ अली की ऑप्शन थी एज अ फिनिशर के रोल में, अगर देखें तो वो आपको पता है बिल्कुल वन डायमेंशनल.
यस, सोए मकसूद अच्छी ऑप्शन थी, सोए मकसूद नहीं स्क्वाड में.
यार लोअर डाउन दी ऑर्डर तो
सोए कंट्रोवर्शियल बात तो नहीं कर दी अभी मैंने,
कॉन्ट्रोवर्शियल है क्योंकि लोअर डाउन दी ऑर्डर तो वो खेलता नहीं है ना ज्यादा, वो या आजकल तो वन डाउन आता है T20, वो भी T20 वाली बात है,
T20 वो भी अब सही कह रहे.
आगे मूविंग ऑन जाते हैं, ये मोहम्मद हारिस नया इंडक्टी है आपका, एक रिजर्व विकेट कीपर है, डेब्यू तो पता नहीं होता है कि नहीं होता बेचारे का, लेकिन जब तक रिजवान परफॉर्मेंस दे रहा है तब तक मुश्किल है इसका. लेकिन ये अब मेरे हिसाब से ना ये अच्छी चॉइस है कि रिजवान की, क्योंकि थोड़ा सा एक स्लाइट क्वेश्चन मार्क है वनडे की परफॉर्मेंस पर, और ये लड़का तेज खेलता है, तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी रिजर्व ऑप्शन है कि अगर रिजवान वनडे में थोड़ा सा डाउन जाता है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में अक्सर रिजवान को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो ये अच्छी ऑप्शन है मेरा ख्याल है. ओके
लेकिन हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में रिजवान को साइड पे मतलब उसको नहीं बिठा सकते क्योंकि मुल्तान में मैच हो रहा लेकिन आपकी बात ठीक है कि मतलब उसकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है ODI में, और जिस पोजीशन पे वो आता है, जिस तरह भी आप बता रहे थे लाइनअप पे, खैर उस पे हम आगे आएंगे है ना.
हाँ, लाइनअप अभी बनाते हैं बस, ये लास्ट ये तो शाहीन पे तो कोई मतलब आपका सवाल की गुंजाइश ही नहीं है, वसीम पे भी
दहानी शाह नवाज से कुछ बात
दहानी पे
आपसे आपका
वाकई
रिव्यू
है।
पूछना पड़ा था।
मैं मेरा 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 इसमें ओपिनियन था कि यार नसीम शाह को देना चाहिए था अगर वो फिट है, क्योंकि वो भी काउंटी खेलते हुए इंजर्ड हो गया था, लेकिन अगर वो फिट है तो
हाँ,
मेरा ख्याल है नसीम शाह को ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए थी दहानी से। दहानी थोड़ा अप
और
एंड
वो
डाउन
बड़ा
है
अच्छा
यार।
परफॉर्म कर रहा है काउंटी में, काउंटी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है।
हाँ
लेकिन आज मैंने उसका देखी थी खबर कि वो वापस जा रहा है पाकिस्तान, क्योंकि उसकी कोई फैमिली इमरजेंसी हो गई है।
हाँ हाँ
तो
हाँ हाँ बट होप फॉर द बेस्ट यार, कोई ज्यादा बड़ा बेचारे के साथ मसला ना हो। बट मेरा
एक प्लेयर,
कंटेंशन
एक हम भूल गए प्लेयर को, हारिस राउत को।
हारिस रऊफ तो यार अच्छा जा रहा है। हारिस रऊफ अभी तक तो आप उस पे वो नहीं कर सकते मेरी नजर में, क्योंकि उसकी T20 की परफॉर्मेंस भी फिट है, फील्डिंग में भी जान मारता है, बॉलिंग में भी पेस
फील्डिंग में
है,
जान मार।
तो अब मेरा ख्याल है गुड ऑप्शन है और थोड़ी सी वैरायटी भी लाता है पेस में, तो मेरा ख्याल है बिल्कुल
हाँ
जबरदस्त।
जी बिल्कुल।
लास्टली जो जहेद महमूद के बारे में क्या ख्याल है?
यार मेरे ख्याल में अच्छी ऑप्शन है करंटली, क्योंकि हमारी
अच्छा,
जिस तरह की पिच है वहां पे लेग स्पिनर का बड़ा मेजर रोल हो सकता है विद
लेकिन क्या ये
कंडीशन बीइंग
खेलेगा?
ऑन। हाँ, खेलेगा नहीं खेलेगा ये एक बड़ी बात है, लेकिन
क्योंकि
मेरे ख्याल
शादाब के
में
होते हुए
इसको
तो
खिलाना
ये
चाहिए।
नहीं यार, लेकिन
हाँ सही कह
शादाब के
रहे
होते
हो।
हुए तो ये नहीं खेलेगा। और दूसरी जो मेरा जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा था, मैं आपसे जो क्वेश्चन करना चाह रहा था वो ये था कि लास्ट 2 ईयर्स हमने रखे हैं, उसको रखा है उस्मान कादिर को, ठीक है, और उस्मान कादिर अभी यंग भी है और उसकी बॉलिंग भी अच्छी है, ठीक है। जायद महमूद को भी बड़े रन्स पड़ते हैं, वैसे उस्मान कादिर को भी रन्स पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई इकोनॉमिकल बॉलर है, ठीक है। वाई नॉट उस्मान कादिर इन प्लेस ऑफ जायद महमूद कंसिडरिंग द फ्यूचर एंड नेक्स्ट वर्ल्ड कप?
बिल्कुल वैलिड बात है आपकी, लेकिन
बहुत वैलिड है ना।
यार बात वैलिड है बिल्कुल कि उस्मान कादिर अच्छा परफॉर्म किया है PSL, बल्कि उसका तो एक मेजर रोल रहा है कुछ मैचेस में,
यार
मतलब
उस
स्कोर हो किया
पे
दो
उस वो भी
विकेट्स
वैसे
में।
उस्मान कादिर इनकंसिस्टेंट है, लेकिन उसको चांसेस भी नहीं मिलते ना, क्योंकि शादाब आपका टीम में एक पक्का मेंबर है, तो उसको चांस भी नहीं मिलता। दूसरा, मोहम्मद वसीम साहब ने कहा है कि हम शॉर्टर वर्जन T20 के लिए उस्मान कादिर को देख रहे हैं
अच्छा,
तो इस वजह से
मतलब कि मोहम्मद वसीम हर किसी के बारे में कोई ना कोई
कोई ना कोई
बात कर
उसने
लेता
प्लानिंग की हुई है हमारे भाई ने। और
है।
वो भी है कि हैदर अली को भी उन्होंने
यार
कहा है
बहुत,
कि वो T20 का में हमारे
वो तो
प्लान में
चले
है
T20 में ही, मेरे ख्याल में T20 का ही वो मेन बंदा है
यार, लेकिन
हैदर अली।
वनडे में आई थिंक कि आपको दरमियान में तेज खेलने वाला बैट्समैन, यंग बैट्समैन ग्रो करना चाहिए यार। अब चौथे नंबर के ऊपर, तीसरे नंबर के ऊपर, बाबर के बाद या बाबर के नीचे जो भी, हैदर अली को आप रख सकते थे एटलीस्ट स्क्वाड में। बट एनीवेज क्या कह सकते हैं, थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क्स हैं ओवरऑल हमारे स्क्वाड में, मतलब
हाँ स्क्वाड में
इफ्तिखार पे थोड़ा सा है मेरा, जाहिद पे भी थोड़ा सा है और दहानी पे भी मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। बट आप मुझे ये बताओ कि आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी पहले मैच के लिए,
यार प्लेइंग
असल क्वेश्चन तो
इलेवन
ये
अगर
है
मैं
ना।
स्क्वाड को देखता हूँ ना, हाँ देखें नो डाउट आपका फेस करेगा इमाम, सही है,
ठीक है
और उसके साथ फखर जमान आएगा।
ठीक
ऑल्दो
है
ये भी बात आ रही है बीच में कि इसको वन डाउन लाया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में इसको ओपनर ही आना चाहिए।
हाँ आना
और
तो चाहिए,
थर्ड
ठीक
डाउन आपका फर्स्ट डाउन आएगा बाबर,
है
बाबर के बाद आएगा रिजवान,
चौथे पे,
रिजवान के बाद आना चौथे पे, हाँ चौथे
ठीक
पे,
है।
और उसके बाद आना चाहिए मोहम्मद नवाज को,
आप कह रहे हो कि
और
पांचवे पे
मोहम्मद
नवाज आएगा,
पांचवे पे नवाज का, और
आना
सिक्स
तो
पे आना
चाहिए
चाहिए
नवाज को ऊपर
शादाब।
ही बैटिंग करनी, सिक्स पे आप कह रहे हो
यार
शादाब,
शादाब को बिल्कुल, सिक्स में शादाब को मैं कह रहा हूँ, और सेवन
ठीक
पे
है
खुशदिल आ गया, नहीं सॉरी सिक्स पे आया खुशदिल, सेवन पे शादाब आए,
ठीक है ठीक है
ठीक है। और उसके बाद वही आपके जो बॉलर्स की लाइनअप स्टार्ट हो जाती है, वसीम आ जाए, ऑलराउंडर आ जाए, मतलब
आठ पे आ
उसका अच्छा
गया।
रिकॉर्ड है। हाँ आठ पे वो आ गया, सही है, नाइन्थ में आपका आ जाए शाहीन आ जाए, टेंथ
ठीक
पे
है
आपका शाह नवाज आ जाए, और इलेवेंथ पे जाहिद आ जाए। जाहिद को मैं, मतलब
नहीं
ये आप
यार, ये
मुझे
आपने
बहुत
एंड में
बहुत
वो
कुछ
अजीब
बोलेंगे,
एंड
मुझे
एंड
पता
में
है,
अजीब हरकत
मुझे
कर दी
पता है,
है।
मुझे पता है आप बहुत बोलेंगे इस बात पे, लेकिन मैं करंट सिचुएशन जिस तरह मैं पिच के बारे में देख रहा था कि स्पिनर्स को बहुत ज्यादा फायदा देगी, तो देखते हैं, इस वजह से मैं जाहिद पे जरा फोकस किया, नहीं तो मैं आप हसन अली को ले आता अगर आप बोलते हैं, लेकिन क्या
चलो ये
कहते
तो
हैं
आपकी चलो होगी प्लेइंग 11। अब मेरी प्लेइंग 11
जी।
मोर लेस बैटिंग ऑर्डर, तो बैटिंग में तो ठीक है, लेकिन मैं नवाज से ऊपर भेजूंगा खुशदिल को, ठीक है, और बाकी मेरा मोर लेस सेम है आपके, मोहम्मद वसीम तक मेरा सेम है। मोहम्मद वसीम के बाद जो है ना, 8वें पे अगर वसीम आ रहा है तो 9वें पे शाहीन, 10वें पे हारिस रऊफ और 11वें पे हसन अली। ठीक है, मेरे तो ये पेसर्स हैं।
मतलब
आपने पेसर
आप
ही उठ,
हारिस रऊफ को भी खिला रहे हैं, आप
हाँ
हसन अली को भी खिला रहे हैं, आप शाहीन को भी खिला रहे हैं, आप
बिल्कुल
वसीम जूनियर को भी खिला रहे हैं,
बिल्कुल, चार
और
फास्ट बॉलर
चार
खेल
फास्ट
रहे हैं और दो
बॉलर
स्पिनर
खेल
खेल
रहे
रहे
हैं।
हैं।
मतलब स्पिनर में आपका कौन आ रहा है? शादाब के साथ
शादाब आ
जो
रहा है
मेन
और
स्पिनर,
नवाज आ रहा है, ठीक है, दो स्पिनर ये हैं और खुशदिल एज अ
ठीक
पार्ट
है।
टाइमर। और क्या चाहिए आपको?
चले सही है, अच्छा
बोल दे
ठीक
बोल दे यार, पीएसएल
यार
में मतलब
मैं
दो तीन, दूसरे तीसरे नंबर पे था यार हाईएस्ट विकेट टेकर, तो 3-4 ओवर तो दे सकता है यार कुछ देर।
चलिए ट्राई कर लेते हैं, अभी कुछ ही देर रहेगी मैच में
ठीक है ठीक है।
तो
अच्छा आगे मुझे ये बताएं कि
अच्छा यहाँ
वेस्टइंडीज,
पे एक मैं ऐड ऑन थोड़ा करना चाहूंगा, जिस तरह
बिल्कुल
नवाज है ना, अब नवाज का मुझे लगता है मतलब नवाज अच्छा है, ठीक है मिडल, लेकिन जिस पर्पस के लिए मोहम्मद हारिस को इन्होंने रखा है और जो आपका अब्दुल्ला शफीक है, इनको ऑल्दो वो तो टॉप ऑर्डर है लेकिन फिर भी इनको चांस देना चाहिए पहले।
यार, इधर आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया, लेकिन इस पे जो दूसरा ओपिनियन है वो ये है कि जो आईसीसी की जो सुपर लीग जो चल रही है आपकी क्वालिफिकेशन के लिए वर्ल्ड कप के लिए, उसमें पाकिस्तान इस टाइम के ऊपर 10th नंबर पे है, ठीक
हाँ
है,
सही होगा सही
तो
होगा
पाकिस्तान
सही होगा
चांस नहीं ले सकता। पाकिस्तान को बेस्ट प्लेइंग 11 से जाना है और इस सीरीज को कोशिश करना 3-0 से जीते, जो कि जीतनी चाहिए, लेकिन उस पर हम बाद में बात करते हैं ना,
लेकिन
अभी आगे आ रहा है ये, देखो जरा वेस्ट इंडीज का स्क्वाड देखो ना जरा आप, ये
लेकिन
आ गया
वेस्ट
जी।
इंडीज का इस टाइम बहुत ज्यादा बूस्ट अप है कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो नीदरलैंड में बड़े अच्छे मतलब अच्छा खासा स्कोर उन्होंने चेस किया तीनों मैचेस
यार
में,
उन्होंने नेदरलैंड को
मतलब
हराया है, हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया है,
हाँ
ठीक है,
यार
ये भी तो देखो
ऑस्ट्रेलिया
ना,
को हम, ये
टू
बात भी
वन
है
टू
ठीक
वन हमने
है।
ऑस्ट्रेलिया हराया है और उन्होंने 3-0 नेदरलैंड्स को
जी
हराया है, लेकिन इनकी टीम नहीं है। जब हम देख रहे थे तो लास्ट सीरीज में नेदरलैंड्स के अगेंस्ट 3 इनके डिफरेंट बैट्समैन ने 100 की, शाय होप,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल
ब्रूक्स और काइल मेयर्स, ठीक है,
बिल्कुल
तो क्या आपका ओपिनियन है ओवरऑल इस स्क्वाड के बारे में, क्या आपके
अच्छा।
तासुरात हैं?
अगर हम देखें जो इनका कैप्टन है निकोलस पूरन, ये तो बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये फॉर्म में नहीं है, मतलब ना इसका नीदरलैंड पे आप देख लें, ये अपनी पोजीशन पे आया लेकिन नहीं परफॉर्म कर सका
नहीं
बिल्कुल,
परफॉर्मेंस
हालांकि
नहीं दे
उनके
सका,
बॉलर्स कोई नहीं थी।
लेकिन
बाकी
बैट्समैन
शाय
बहुत अच्छा
ऑफ
है।
बहुत अच्छा, मतलब ये मतलब मेरे ख्याल में इनके स्क्वाड में यही एक एक्सपीरियंस अच्छा बंदा है इस टाइम। शाय ऑफ बहुत अच्छा है, मतलब ये भी मतलब अच्छा बैट्समैन है, जिसने आपने बताया कि सेंचुरी मारी है इसने नीदरलैंड में, तो
बिल्कुल बिल्कुल
बड़ा अच्छा एक इनको एक ओपनर मिल गया यहाँ पे। फिर
हाँ
उसके बाद जो बूनर है ये जो है इस पे क्वेश्चन मार्क है मेरी तरफ से, आप क्या कहते हैं? मैं
मेरी
मतलब
तरफ से भी
इसको
है, मेरा ख्याल है ये लॉन्गर फॉर्मेट का प्लेयर है जो इन्होंने डाला, क्योंकि मैं इंटरव्यू सुन रहा था जब इधर आया आपका क्या नाम है निकोलस पूरन, तो वो कह रहा था क्योंकि ये T20 की फॉर्मेट को ज़्यादा खेलते हैं वेस्ट इंडीज़ वाले ना, और जल्दी आउट हो जाते हैं 50 ओवर्स में, तो ये कह रहा था कि हम, हमारी कोशिश है कि हम ज़रा स्टडी बीच में बैट्समैन हो हमारे, ताकि हम लंबा खेल सकें थोड़ा सा, तो शायद उस वजह से बॉनर को इन्होंने रखा है अपने स्क्वाड में। ब्रूक्स के बारे में क्या ख्याल है? ब्रूक्स इज अ गुड गुड बैट्समैन।
यार वेरी सेंसिबल बैट्समैन, वेरी वेरी सेंसिबल बैट्समैन, मतलब ना आपने देखा है इसने फर्स्ट ओडीआई में 60 रन मारे थे नीदरलैंड वाले में, लेकिन उसके ओवरऑल भी देखा जाए कि इसकी एवरेज भी अच्छी है, 45 की एवरेज है और
बिल्कुल
इसकी बहुत अच्छी गेम है यार, मतलब ना मतलब कि मजा आता है देखने का इसको, ये इस टाइप का बंदा, और
और
मेरे
लॉन्गर
ख्याल में
फॉर्मेट भी
ये
खेलता है।
बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल। ऑल्दो यार लेकिन इसकी एज काफी होगी ये मतलब वेस्ट इंडीज को थोड़ा मतलब ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकेगा, 33 ईयर्स का अभी, तो
हाँ ये
मेरे ख्याल
मतलब
से
ये
इसका एक ही वर्ल्ड कप है,
फवाद आलम स्टोरी है इसके साथ भी।
फवाद आलम स्टोरी
हाँ
है सही है
हाँ
बिल्कुल।
तो अच्छा मूविंग ऑन, ये अकील हुसैन तो स्टार ऑफ द शो है ना, ये तो बहुत जबरदस्त बॉलर है इनका,
सर ये
और
कल भी छा जाएगा आप देखना, कल छा जाएगा ये
अल्लाह ना करे। अच्छा, और अल्जारी जोसेफ भी बड़ा अच्छा फास्ट बॉलर है, तो ये दो तो ऑप्शंस इनके पास मतलब बड़ी अच्छी हैं। इन दोनों ने नेदरलैंड्स के अगेंस्ट भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी।
बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया।
ये आपका नया प्लेयर है कार्टी जो है, इसका रिकॉर्ड इतना कोई खास डोमेस्टिक में था नहीं जब मैंने देखा है, लेकिन आई डोंट नो कि क्या रीज़न है जो इसको इन्होंने डाला है
यार
बट।
ये अच्छा, वो जो अभी पाकिस्तान के साथ मैकेनिज्म चल रहा है ना कि T20 को रेप्लिकेट करें ODI में, इसका भी यही हिसाब है। अब इसका केसी कार्टी ने मतलब सिर्फ तीसरे मैच पे आई थिंक नीदरलैंड वाले में इसने सपोर्ट किया है उसको, क्या कहते हैं, काइल मेयर्स को। तो मतलब 40 रन मारे इसने, आई थिंक 40 44 मारे, तो
मतलब एक ही
मेरे
मैच
ख्याल
खेला
में
है
उस
अभी
पे
तक।
से। हाँ, और दूसरा यार जलाल, आप भी देखिएगा, बल्कि आप, आपको पता ही है कि ना वेस्ट इंडीज के स्क्वाड में अभी कोई सीक्वेंस नहीं है कंफर्म अभी तक। जिस तरह होता नहीं यार, अच्छा फेस ये बंदा है तो ये तो फेसर ही आए, जिस
हाँ
तरह
हाँ
इनका ना, इन्होंने पहले ODI के इनके फेसर सेम थे, सही है, और वो जो मिडल ऑर्डर था सेम था, सेकंड में चेंज था मिडल ऑर्डर, थर्ड पे फेसर चेंज था। तो ये अभी ना ये लोग खेल रहे हैं अभी तक टीम के साथ, मेरे ख्याल में, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है।
रीबिल्डिंग फेज है तो अभी इसी वजह से मेरा ख्याल है उनसे वो लाइनअप सेट नहीं हो रही अभी। इसी जैसे हमारे लिए भी लाइनअप बनानी इनकी मुश्किल है, पता ही कोई नहीं है कि कौन ओपनर आएगा कौन वन डाउन आएगा, लेकिन ओवरऑल देखते हैं जो भी मतलब हिसाब बनता है इनका। ब्रेंडन किंग यार बड़ा अच्छा इनका अपकमिंग प्लेयर है, बैट्समैन, इसकी मैंने बैटिंग देखी है, मतलब सॉलिड बैट्समैन है, मारता भी है यार अच्छा खासा, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है इनके
बिल्कुल,
पास।
ये इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी खेल चुका है ना, है
हाँ,
ना,
तो मेरा
और
ख्याल है ये
गुड
PSL
ऑप्शन।
तो खेला है लेकिन आई मुझे टीम की एग्जैक्टली
नहीं,
याद नहीं।
इस्लामाबाद यूनाइटेड में ही है बिल्कुल।
अच्छा, ठीक है।
बाकी रोबमैन पॉवेल के बारे में बताएं कि
उसके
क्या
बारे में तो आजकल हिट ही है भाई, वो तो हर जगह हिट है, वो इतनी लंबी लंबी हिटें मार रहा
कहते
है, पता नहीं कहाँ से इतनी जान लाता है
हैं।
वो बंदा। उसने तो IPL में
सही
भी
बात।
कुछ एक परफॉर्मेंसेस दी हैं और ओवरऑल उस
अच्छा
हाँ उसके मैंने मैचेस देखे हैं, बहुत लंबे लंबे छक्के मारता है। मतलब ये इस तरह के प्लेयर पता नहीं इनके पास कहाँ से आ जाते हैं यार, कभी आंड्रे रसल आ जाता है, कभी पोलार्ड आ जाता है, कभी ये आ जाते हैं, पता नहीं।
यार बहुत तबाही है इनकी, लगता है इनके जो कोनी है वेस्ट इंडीज में कोई खास बात।
जीन्स
मैं यार देखे ना जीन्स, बिल्कुल आप देखें 7th 8th ऑर्डर, फिर हम अगर पास्ट में चले जाएंगे तो लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन वो वर्ल्ड कप फाइनल याद ही होगा आपको, अनएक्सपेक्टेड
हाँ,
3-6
रिमेम्बर द
इन अ रो,
नेम ब्राथवेट है।
रिमेम्बर। ऐसे ही है,
लेकिन
ऐसे ही है।
ये आते हैं और चले जाते हैं, पता नहीं इनकी कुछ समझ नहीं आती यार कि ये क्या इनकी कंसिस्टेंसी वाला चक्कर है। एनीवेज वो इनका मसला है। हेडन वॉश लेग स्पिनर, अच्छा लेग स्पिनर है, मतलब स्किडी टाइप बॉलर है और परफॉर्मेंस ठीक है, मतलब बनता है इसका मेरे ख्याल में, मैंने इसके जो परफॉर्मेंसेस देखी हैं उसके हिसाब से मेरे ख्याल में बनता है। काइल मेयर्स के बारे में बताओ यार, ये अच्छा लेफ्टी खब्बा
यार
बैट्समैन है।
ये खब्बा बैट्समैन, और ये सेंचुरी भी मार के आया है अभी, और काफी बूस्टअप है, स्ट्राइक रेट भी इसका अच्छा रहा है, और ये मतलब मेरे ख्याल में ये कल जो है ना ऊपर खेलेगा, इसको
ऊपर
नीचे नहीं
भी खेल
खिलाएंगे।
सकता है और ये ना बड़ा वर्सेटाइल बैट्समैन है, ये टेस्ट मैच का भी बैट्समैन है, इसने बांग्लादेश के खिलाफ आई थिंक डबल सेंचुरी मारी थी 4th इनिंग्स में, हारा हुआ मैच
अच्छा
जिताया था इसने, बड़े लंबे लंबे छक्के भी मारे थे। ये T20 भी खेलता है, ये वनडे भी खेलता है और ये टेस्ट मैच भी खेलता है अपने डोमेस्टिक स्केल के ऊपर, तो ये मतलब प्रॉपर बैट्समैन है मेरा
प्रॉपर
ख्याल है,
बैट्समैन
एक
देखो।
अच्छी चॉइस है। लुइस जो है ये मेरा ख्याल है अप एंड कमिंग एक प्लेयर
हाँ,
इनका।
राइजिंग स्टार कह सकते हैं
देखते
कि
हैं
मतलब
कितना स्टार
बॉलिंग
इसका राइज
इसकी,
करता है।
मतलब हाँ बिल्कुल, और बॉलिंग में मतलब इसने लास्ट मैच में आई थिंक अच्छी बॉल कराई है काफी, मतलब इसके
हाँ
ना अच्छी थी एवरेज, तो इकोनॉमी सही थी इसकी। तो
बिल्कुल।
अच्छा एक और जलाल, आप अगर देखें नीदरलैंड वाली सीरीज और वेस्ट इंडीज का उसपे परफॉर्मेंस देखें, तो इनकी स्ट्रेंथ मुझे बैटिंग लग रही है, बॉलिंग नहीं लग रही बिल्कुल इस पर,
काफ़ी
क्योंकि
अरसे
नीदर है
से
ना।
काफ़ी अरसे से वेस्ट इंडीज़ के साथ यही चल रहा है कि इनके पास ना कोई आउट एंड आउट बॉलर नहीं आ रहा जिस तरह मतलब पहले होते थे इनके ना, तो ये ऑलराउंडर टाइप बॉलर्स इनके, रसल भी कभी, रसल की भी पेस देखो कभी बहुत तेज़ करा रहे थे कभी बड़ा, फिर पोलार्ड पोलार्ड टाइप के बॉलर्स। तो अभी जैसा ये अगला रोमारियो शेफर्ड है, रोमारियो शेफर्ड साहब जो है ये भी मतलब मीडियम पेसर और बैटिंग कर लेता है, तो ये उसी तरह की कैटेगरी वाले हैं। लेकिन अभी जो इस टीम में मुझे जो बेहतर सीन लग रहा है वो ये लग रहा है कि इस अलज़ारी जोसेफ है या जेडन सील्स जो अपकमिंग इनका बड़ा अच्छा बॉलर है, ये जेन्युइनली अच्छा बॉलर लग रहा है, यंग है, फास्ट है, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है कि इसकी जोड़ी, और फिलिप के बारे में आप मुझे बता रहे थे कि ये भी एक अच्छी इसका रिकॉर्ड है फर्स्ट क्लास लेवल के ऊपर, तो
मेरा ख्याल लेकिन ओडीआई में ये इतना नहीं पता नहीं, शायद अभी इतना टाइम नहीं हुआ इसको, इट्स टू अर्ली,
हाँ मतलब अभी तो चांस नहीं है, लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये अब कॉम्बिनेशन बॉलर्स की तरफ भी देखना चाह रहे हैं, अच्छे बॉलर नहीं होंगे तो यार मैच नहीं जीत सकते, फिर प्रॉब्लम है,
और खास तौर पे इस तरह की पिचेस पे, इस तरह की पिचेस पे।
बिल्कुल यार, पिचेस का मसला ही, अगर पिचेस बहुत अच्छी हो गई तो टॉप ऑर्डर ही खेलता रहेगा, मेरा ख्याल है हमारी तरफ से बाबर आजम, इमाम और फखरी खेलते रहेंगे, नीचे लोगों की शायद बारी नहीं आई।
वो फिर वही सीन हो जाएगा ना कि वार्नर बोलेगा, वार्नर ट्वीट करेगा कि ऐसी पिचेस बना दो एटलीस्ट कोई आउट हो जाए, तो याद है आपको जो,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार, लेकिन
तो ये एक है।
अच्छा अब इनकी प्लेइंग 11 मैं सोच रहा था, लेकिन मैं नहीं बना सका क्योंकि मुझे नहीं पता कि इनकी क्या प्लानिंग चल रही है। हाँ
तो लेकिन कुछ चीजें, कुछ जैसा आपके जो है क्या कहते हैं, शायद तो फेस करेगा, सही है,
हाँ ओपनर आएगा,
और हाँ बाकी जो मिड, जो आपके जो मिड ऑर्डर है उस पे कैप्टन आ जाएंगे और इसको शामर ब्रूक्स को खिला देंगे।
हाँ।
तो हाँ सही कह रहे हैं, इतना ज्यादा इसको नहीं हम कर सकते,
काइल मेयर्स वगैरह मिडिल ऑर्डर में आ जाएंगे, ये अकील हुसैन लोअर, मतलब ये बॉलर, अज़ारी जोसेफ, जेडन सील्स, ये तीन तो पक्के हैं, और ओमारियो शेफर्ड को भी डालेंगे एज एन ऑलराउंडर, लेकिन बाकी बॉलर का नहीं पता, लुइस को खिलाते हैं, फिलिप को खिलाते हैं, ब्रेंडन किंग खेलेगा, मतलब इनके ऑर्डर का उस तरीके से आइडिया नहीं है कि किस तरह खिलाएंगे, लेकिन ओवरऑल टीम बुरी नहीं है, पाकिस्तान को लेकिन जीतना चाहिए क्योंकि इनएक्सपीरियंस टीम है,
जरूरी
अभी
है,
रीबिल्ड हो रही है,
जरूरी भी है,
जरूरी भी है पाकिस्तान को पॉइंट्स के हिसाब से, ठीक है। और बाकी जो है मेरा ख्याल है रैप अप करते हैं, ओवरऑल तो सारा कवर हो ही गया है, क्या ख्याल है आपका?
हाँ जी बिल्कुल, ओवरऑल हमारा कवर अप हो गया, स्क्वाड को भी कर लिया है और थोड़ा एनालिसिस भी हमने दे दिया, तो थोड़ा आप बता दें कि हमारे चैनल को ऑडियंस का जो फीडबैक होगा उस पर हम बात कर लेते हैं कि हमें आप अच्छा फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट हम करें,
बस किस तरह सच, सच, जो भी आपका रिस्पॉन्स अच्छा लगा है तो
गो विद द फ्लो, हाँ जी
बुरा लगा तो भी बताएं, और हमारे प्लान्स में बहुत कुछ है, बहुत एक्साइटिंग चीजें हैं, तो देखें आहिस्ता आहिस्ता हम रिवील करेंगे, लेकिन जो है अभी के लिए मेरे ख्याल है इतना है, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में आपके साथ।